नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जल डमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमरीका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।